ਦੁਆਰ ਨਾ ਰੂੰਦੇ ਨਾ ਅਨਹਦ ਉਲਝਾਵੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤ ਕਹਾਵੇ ਬਈ ਮੈਂ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਭਾਵੇ ਜੋ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਬਤਾਵੇ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਕੈਸੀ ਹੋਤੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਾ ਅਰਥ ਹੋਤਾ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਚਿੱਤ ਹੈ ਉਸ ਵਸਤੂ ਸੇ ਕਭੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਉਸਮੇ ਹਮਾਰੀ ਏਕਾਗਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਤੋ ਯੇ ਹਠ ਯੋਗ ਯੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੇ ਤੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਆਪਣੀ ਅਟਕਲ ਲਗਾ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਰੱਖੇ ਔਰ ਦੇਖਮ ਦੇਖਾ ਯੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੈਂ ਔਰ ਕੇਵਲ ਅੰਦਰ ਆਖੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਦੇਖੇ ਜਾ ਬਸ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿਆ ਦੇਖਣੇ ਸੇ ਲਾਭ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਤੋ ਉਠਾ ਲੋ ਜੋ ਤੁਮ ਬੀਜ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸਕਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਇਸੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਆ ਆਪਕੋ ਯਾ ਵੈਸੇ ਕਰਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਉਸਕਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਸਕੇ ਲਾਭ ਕਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੇ ਸੇ ਕਿਆ ਲਾਭ ਹੋਗਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਕੋ ਕੇਵਲ ਉਹ ਤੋ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ ਭੋੜੀ ਆਤਮਾਓ ਕੋਲ ਜਾਏ ਬੈਠੇਗੇ ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਨਕੋ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਤੁਮ ਕਿਸ ਬੀਜ ਕੋ ਬੀਜੇ ਬੈਠੇ ਇਸਕਾ ਲਾਭ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਫਲ ਹੋਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਇਸਕਾ ਕਿਆ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਸੇ ਬਲੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਪੇਟ ਮੇਂ ਦਰਦ ਹੋ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਬ ਤੱਕ ਉਹ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਜਿਸਕੇ ਕਾਰਨ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨ ਭਰਮਿਤ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ ਤਬ ਤੱਕ ਏਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ ਚਾਹੇ ਕਿਤਨੀ ਬਾਤ ਬਣਾ ਲੀ ਤੋ ਵੋ ਹੋਤਾ ਕਰਮ ਤੇ ਔਰ ਕਰਮ ਕਟੇ ਨੀ ਸੰਤੋ ਸੇ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਨਾ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਔਰ ਨਾ ਨੀਚੇ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂ ਮੈਂ ਇਸਤੇ ਵੋ ਕਰਮ ਕਾਟਣੇ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਔਰ ਵੋ ਕਰਮ ਕਾਟੇ ਯਾਨੀ ਕਾਂਟਾ ਨਿਕਲਾ ਦਰਦ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤੋ ਫਿਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾ ਜੂਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਅਬ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਧਿਆਨ ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਔਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲਿਆ ਵਿਆਜ ਪੇ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸਕੋ ਤਿਜੋਰੀ ਮੇਂ ਰੱਖ ਦਿਆ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਕਾ ਔਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਮੰਤਰਣ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲਿਏ ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮਨੁਮਾਨ 500-800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਸਮੇਂ ਔਰ ਸੁਬਹ ਜਬ ਚਲਾ ਵਹਾਂ ਸੇ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤਿਜੋਰੀ ਸੇ ਕੁਛ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਔਰ ਗਲਤੀ ਸੇ ਵਹ ਤਿਜੋਰੀ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਸ ਮੇਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਥੇ ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਔਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰਾਤ ਕੇ 8-9 ਵਜੇ ਔਰ ਵਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੀ ਤੂੰ ਤੋ ਵਹ ਤਿਜੋਰੀ ਖੁੱਲੀ ਛੋੜਿਆ ਵੋ ਅਲਮਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਛੋੜ ਦੀ ਜਿਸ ਮੇਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਥੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਨਿਕਮੀ ਆਤਮਾ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾ ਕੋਈ ਅੜੋਸੀ ਪੜੋਸੀ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਪੈਸਾ ਦੇਖੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਭ ਕੀ ਨੀਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਮਨੁਮਾਨ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿ ਬਾਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਅਬ ਉਹ ਵਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਬਕੋ ਸਬਸੇ ਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੋ ਕੋ ਨਿਮੰਤਰਣ ਵੀ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸਕਾ ਚਿੱਤ ਹਮੇ ਉਸ ਅਲਮਾਰੀ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹਾ ਏਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਉਸਕੀ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਥਾ 20 ਜਗ੍ਹਾ ਗੁੰਮ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇਣੇ ਕੋ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਾ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯੇ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਮੇਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਗਾ ਔਰ ਚਾਹੇ ਵੋ 100 ਵਿਅਕਤੀਓ ਕੋ ਮਿਲਤਾ ਰਹੇ ਉਸਕਾ ਏਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਚਿੱਤ ਉਸ ਅਲਮਾਰੀ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਤਾ ਯੇ ਹਮਾਰਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਇਸਕੋ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਯੇ ਸੰਤੋ ਕਾ ਧਿਆਨ ਹੋਤਾ ਜੈਸੇ ਯੇ ਦਾਸ ਆਪਕੋ 4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਪਰਿਚਿਤ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੇ ਕਿ ਜੈਸੇ ਜਬ ਹਮਨੇ ਕਿਸੀ ਵਸਤੂ ਕੇ ਗੁਣੋ ਕਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਕੀ ਪਾਣੇ ਕੀ ਤੜਫ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਬਨ ਜਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਜਬ ਤੱਕ ਉਹ ਵਸਤੂ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਆਪਕਾ ਚਿੱਤ ਯਹਾਂ ਸੇ ਵਹਾਂ ਸੇ ਹਟੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਬ ਜੈਸੇ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਮ ਕਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੈ ਇਤਨੇ ਭੈਂਕਰ ਸਥਲ ਪਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਿਸਕਾ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਜ ਹਮੇ ਸਭ ਸੁਖ ਨਜ਼ਰ ਆਤੇ ਕੱਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਗਿਰ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹਾਂ ਕਾਲ ਕਾ ਲੋਕ ਹੈ ਔਰ 1,00,000 ਮਾਨਵ ਸਰੀਰਧਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣੀਓ ਕੋ ਯੂ ਕਾਲ ਯੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂ ਮਹੇਸ਼ ਕਾ ਪਿਤਾ ਯੂ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜਿਸਕੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਤੇ ਯੇ ਸ਼ਿਵ ਹੈ ਪੂਜਾ ਕੀ ਯੋਗ ਯੇ 1,00,000 ਜੋ ਮਾਨੁਸ ਸਰੀਰਧਾਰੀ ਜੀਵੋ ਕਾ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਜ 1,00,000 ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ ਉਨਕੇ ਘਰ ਮੇਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੇ ਫਿਰ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਕਾ ਨੰਬਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੋ ਕਹਿਣੇ ਕਾ ਭਾਵ ਯੇ ਕਿ ਜਬ ਆਪਕੋ ਯੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਮ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸਥਾਨ ਪਰ ਬੈਠੇ ਹੈਂਗੇ ਤੋ ਬਹੁਤ ਭੈਂਕਰ ਸਥਲ ਹੈ ਯਾ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਬ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਗਿਰੇਗੀ ਔਰ ਹਮ ਤੋ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸਥਾਨ ਤਬ ਯਹਾਂ ਸੇ ਆਪਕਾ ਚਿੱਤ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਕੈਸੇ ਉਸਕੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਚਾਹੀਏਗਾ ਜੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਾ ਆਪਕੋ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਕਾਲ ਆਪਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦਬਾਅ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ ਆਪਕੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਉਸਕਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਯੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਕੋ ਅਲਗ ਉਸਸੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਾਟ ਲੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਣ ਮੇਂ ਲੇ ਲੇਗਾ उसके बाद इस काल का दबाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। तब आपको और डर लगेगा है परमात्मा कहीं फिर न रह जाए इस काल के जाल में। और फिर आपका जो पल पल ध्यान यहाँ से ऊपर पहुंचेगा, एक पल भी नहीं हटेगा आपका, जैसे कोई आपत्ति में कहीं बंद हो जा कैद में, इसको बाहर बैठाओ, पीछे न कर दो, पीछे छोड़ा उसको। अब और वो की तक कैद में बंद हो जा, और फिर उसको पल पल याद आओ अपने बच्चों की, है परमात्मा कब छुट्टी मिला है, या तो बड़ी गलती बनी मेरे तय। तो ऐसे उस इस प्रकार हमारा जो चित्त है वो एक पल भी दूर नहीं होगा। ऐसे आपका फिर अपने आप उस परमात्मा में इतना अट्रैक्शन बन जाएगा, उसको सहज समाधि कहते हैं। कैसे? जैसे इसको सहज समाधि कहते हैं, ये है संतों का मेडिटेशन ध्यान। कैसे? कबीर परमात्मा के दर्शन के बाद गरीबदास जी महाराज क्या बताते हैं अपनी उस अमृत वाणी में, जैसे हाली बीज धुन और पंथी से बतलावे उसमें खंड पड़े नहीं फिर ऐसे ध्यान लगावे। जैसे हाली बीज बीज रहा हो, एक थैले से बीज लेता है और एक लोहे की पाइप के अंदर से उसको सिस्टेमेटिक डंगता है, तरतीब वाइज उसमें डालता जा रहा है, बैल चल रहे हैं, रस्ते में कोई अतिथि उससे आता हुआ कोई पूछ लेता है, मुझे मार्ग बताइए, मैं इस देश उस गांव में जाना चाहता हूं, ये रास्ता ठीक है कि नहीं है, तो वो बीज भी बीज रहा है और हल भी चला रहा है उसमें, बिल्कुल रोकता नहीं उसको और कह रहा है कि आप सीधे जाइए, वहां जाकर के बाएं तरफ जाइए, वहां कुआं मिलेगा, उससे आगे कुएं से राइट को दाएं तरफ हो जाना, वहां एक नीम का वृक्ष होगा, उससे सीधा रास्ता जाएगा, वहां तीन रास्ते होंगे, बीच वाले से चला जाना, और साथ में वो बीज भी बीज रहा है। यहां परमात्मा कहते हैं जैसे हाली बीज धुन, बीज में धुन माने लौ लग रही है उसकी, धुन धुन माने उसकी लौ एकाग्रता, जैसे हाली बीज धुन और पंथी से बतलावा, पंथी माने यात्री तक बात करे, और वह में खंड पड़े नहीं, भाई ऐसे ध्यान लगावे, हमारा ऐसे ध्यान है जैसे आप बस में बैठ गए और दो घंटे का सफर हो, अपना मालिक का भजन करता जाओ, उसने चेत अटैक हो नहीं, चलते फिर चलते नाम भी जपे, और किस लिए जप रहा हूं, क्योंकि हमने वहां जाना है, इस उद्देश्य से इस मंत्र को जाप करते करते आपका मेडिटेशन भी साथ हो रहा है, इसको ध्यान कहते हैं। एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, हम एक देसी घी की जोत प्रतिदिन लगाने की प्रार्थना करते हैं, सभी भक्तात्माओं से आदेश है ये कि रोजाना सुबह और शाम एक रूई की जोत बनाकर और उसमें जितना उचित हो सके 50 ग्राम 20 ग्राम 100 ग्राम तक घी आप आराम से डाल दीजिए, चिंता मत करिए। कहते हैं देते को हर देता है जहां तहां से आन, और नहीं दिया वो मांगते फिर यो फिर परमात्मा सुने ना कान। धर्म तो दस के नीचे दस के तीनों लोक, और इस खैर आयत में खैर है भाई कीजे आत्म भोग। चिड़ी चोंच भर लेगी नदी ना घटो नीर, दान दिए धन घटे न्यू, कहते साहिब कबीर। ऐसे सुबह और शाम कीजिए। और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, दंडवत प्रणाम, प्रणाम भी एक यज्ञ का काम करती है। विनम्रता हमारे अंदर आएगी नहीं तो परमात्मा निकट नहीं आ सकता, और किन में दंडवत किस कौन कर सकता है, वो करेगा जिसमें ईश्वरीय शक्ति हो जाएगी, यानी भक्ति की कमाई बन जाएगी, और जब तक आपके अंदर भक्ति की कमाई नहीं है तो आप प्रणाम नहीं कर सकते, सिर झुके नहीं आपका। कैसे? जैसे सरसों होती है, सरसों और उसकी फली होती है प्रारंभ में, वो फली ऐसे खड़ी रहती है ऊपर को, कब खड़ी रहती है, जब उसमें कच्चे दाने होते हैं, उसका वो कीमत नहीं होती, ना उसकी खल बने ना तेल बने एक आने की नहीं, और जो जो उसमें वो परिपक्व होती जाती है उसकी कीमत बनती जाएगी, और अपने आप ऐसे झुक जाएगी जैसे जमीन में टिकने को हो जाएगी, अपने आप उसके बस की बात नहीं, ऐसे ही जिसमें जितनी ज्यादा भक्ति बनेगी, जितना ज्यादा परमात्मा कि उसके अंदर कमाई बनेगी नाम की, उतना ही विनम्र हो जाएगा, उसके बस की बात नहीं रहे। चाहे को जूत मार दे, चाहे को गाली भी दे दे, उस पर उसका प्रतिफल दिया वो है को नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो एलिमेंट रहा नहीं जिसके कारण वो उपण था। तो ऐसे बनेगा, निदंडोत प्रणाम हो नहीं सकती लंबा लेट के, क्योंकि शर्म आवे, शर्म की आवे इस मिट्टी की, आज मर जाएंगे तटके गद्दे लोटा करेंगे इसके ऊपर। और अदरंग मार जाए, अदरंग ना मार रखे, और किसी को पैरालिसिस हो गया ना, उसने देखा यू एक बजा के रखते शर्म आवते, बांगा मुंह हो जा, हाथ उठे ना पैर उठे, मुख में माखी घुसे और निकले, लाल पड़े, सारा परिवार ते छिकले, और उसे न्यू कहे भगवान इसकी मिट्टी संगवाले। तो जिसने ये बात याद आऊंगी वो झुकेगा भाई, और उसी के निकट प्रभु आएगा। अब जैसे गधे बन जावांगे, सारी उम्र तक दंडवत करेंगे क्योंकि लंबा लोट के, और फिर क्रॉलिंग करेंगे सारी उम्र पैदल, ऐसे चलना नीचे न मुंह करके खड़े हो ही नहीं सकते जिसा कड़मा में फिरा करते थे। और डायमंड का बोरा ऊपर लठ, ये याद आऊंगे जब यह दंडवत प्रणाम की जाएगी, हमने आप गारा में लुटा ली लौट जाएंगे, गारा में कति कीचड़ हो रहा हो ना, वहां उस परमेश्वर के लिए कहीं लेटाओ, इस मिट्टी को इस मिट्टी से हमने वो सोना बनाना है राम नाम का, और इस मिट्टी की सफाई और इसी के अहम में लगे रहे तो वो चीज रह जाएगी जिसके लिए परमात्मा ने मिट्टी हमें दी थी। ये चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की। अब ज्ञान से ही जानकारी होगी हमने कौन सी भक्ति करनी चाहिए, कौन है वो भगवान जिसकी पूजा करने से जीव का कति छुटकारा होगा, ये हमारे पवित्र शास्त्र बता रहे। तो धर्मदास जी को बताया कि धर्मदास गीता जी में जो लिखा है ऐसे करने से बात बनेगी या उसके केवल पाठ पाठ से? जैसे जमींदार का पुत्र यदि पिता के दिए हुए उस गाइडलाइन को, उस लेख को पढ़ता रहे और खेती करे नहीं जैसे उसमें निर्देश है तो क्या होगा? धर्मदास चुप हो गया, फिर कहने लगा हम व्रत भी करते हैं एकादशी का, अब वो बात तो माननी जो सच्चाई सामने आती है। कबीर साहब बोले गीता जी में कई प्रमाण है कि व्रत रखा करो, मना है गीता में छठे अध्याय का 16वां श्लोक, गीता में जो लिखा वो तो तुम कर नहीं रहे उसके विपरीत कर रहे हो, तो इसको शास्त्र विरुद्ध साधना कहते हैं। शास्त्र विधि को त्याग कर अपना मनमानी पूजा करे तो भगवान के आदेश को तोड़ कर, इसको शास्त्र विधि रहित पूजा कहते हैं। ये कभी ना सफल हो, ना गति हो, ना कोई सुख हो, अध्याय नंबर 6 का और श्लोक नंबर 16 देखिए। हे अर्जुन, योग योग माने भक्ति, भक्ति साधना, न तो बहुत खाने वाले की और न बिल्कुल न खाने वाले की। एकादशी का व्रत रखने वाले कति नहीं खाते, बिल्कुल ना खाता कहते वो मना है, देखो नीचे, बिल्कुल ना खाने वाले की यानी व्रत रखने वाले की, और न ही गना सोने वाले की और न ही गना जागने वाले की, कभी सद नहीं होती। इतना भी नहीं खावा दड़ी पक्का भी आलस आवे, अंगड़ाई टूटे जा भक्ति होनी, और इतना भी नहीं खावा कति जो है ना आंत बंद हो जा। अब ये दास व्रत रखा करता हनुमान जी का, और चौथी कक्षा से प्रारंभ किया था, जब चौथी कक्षा में क्या उम्र होती है बालक की, और कभी नागा नहीं जाने दिया, सिर में दर्द हो जाता, बोधा सा ऊं था, घर के कहते भाई ते एक तो सारा दिन रोटी नहीं खावे, और फिर सिर में दर्द हो जाए तू कपड़ा बांध के पड़ जावे, मत खा कराया कर इस व्रत ने। मैंने उनकी एक नहीं सुनी, क्योंकि मुझे तो प्रभु की तरफ थी तलाश थी, और 7 बार हनुमान चालीसा क्रिया करता। अब बालक था, भगवान हनुमान तो याद आता नहीं, रोटी याद आया करती 10 बजे पाछे, किस टाइम वो 2 बजे किस टाइम 4 बजे रोटी खाऊं, और फिर भूख भर जाती, एक टूक नहीं खाया जाता, मुश्किल से आधी रोटी खाई जाती। तो वो हनुमान जी तो याद आते नहीं, पर वो रोटी जरूर याद आती, वो सिमरन चिंतन उस रोटियों का रहता भगवान का नहीं। फिर एक दास एक बार जब उपदेश के उपरांत एक रिश्तेदारी में चला गया, ये सतभक्ति मिलने के उपरांत, वहां क्या देखा कि कुत्ता एक, मैंने उसको रोटी डाल दी, रोटी खाऊं था ना बाहर उनकी पौड़ी में बैठ कर, उस रोटी ना खाई कुत्ते ने, मतलब शाम के 5-6 बजे की बात थी, उसने रोटी ना खाई। मैं कहने लगा भाई आज इस कुत्ते को क्या खिला दिया तुमने, ये रोटी नहीं खाता, नहीं कुत्ता तो खाने के ऊपर बड़ी शीघ्रता करता है। तो फिर उसने भी सोच कर बताया कि आज मंगलवार है, यू खावे को नहीं, आज यू खाना ना खावे। वहां क्यों भाई, कि पता नहीं इसे ये मंगलवार को खाना कभी नहीं खाता। अच्छा, हमने इसको खूब जो इनका स्वादिष्ट भोजन था इसको प्रिय था वो भी डाल के देख लें, पर ये कभी नहीं खाता मंगलवार को। तो थोड़ी देर के बाद उसने क्या किया, वो उठाकर रोटी और मुख से अरुण का एक कूड़ा सा पड़ा था उसमें दबा दी। सुबह मैं उठा घूम फिर काए तो चाय पानी पीने लगे तो देखा सामने वो कटर कटर, क्योंकि गर्मियां के दिन थे, वह सूखी गई रोटी उसने खान लग रहा कूड़े मत निकाल के। उस व्रत वो सुबह व्रत खोल रहा उसको नहीं। अब बात याद आई है परमात्मा देख के जुलम बनता है, शास्त्र विधि छोड़ के जो साधना कर रहे थे व्रत रखा करते। अब देखो उस प्यारी आत्मा ने जब मानव शरीर में होगा कितना घोर उपासना की होगी, उस व्रत की उपवास किए होंगे। जो उसको कुत्ते के जीवन पशु के जीवन में भी मंगलवार याद है, हम मनुष्य जीवन में भूल जाते, पूछना पड़ता है कौन सा वार है। एक घंटा तक रोया बैठ के चादर में मुंह ढक के, ये परमात्मा देख के बनती, क्योंकि हमारा कोई गाइड तो था ही नहीं। एक साथी से सीख लिया तू क्या पूजा करता है, वो कहने लगा हनुमान जी का व्रत रख ले और 7 बार हनुमान चालीसा कर ले, रोज करने लग गया था और उस साधना से वो कुत्ता बन गया। ऐसे इस व्रत करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि हमारे पवित्र शास्त्र गीता जी में मना है तो हम गलत कर रहे हैं, शास्त्र विधि त्याग कर करें। फिर कहने लगा परमात्मा बोले भाई क्या तुम श्राद्ध भी निकालते हो। कबीर साहब बोले धर्मदास थे अखां जी और पितर हमारे जो है ना श्राद्ध निकालते ना, तो पितरों को वहां आहार नहीं मिला। कबीर साहब बोले भाई पितर क्यों बने, वो पितर बने क्यों, वो यही पूजा करते थे धर्मदास जो तू कर रहा है, वो श्राद्ध निकाल लिया करते, तुम पितर पिंड भरवाया करते, फूल उठाया करते और पितरों की पूजा करते थे और ये गीता जी का पाठ करा करते, रामकृष्ण की जो मनमुखी पूजा करते थे वो इसी से तो पितर बने, या कोई और पूजा करते थे तेरे पिताजी तेरी माताजी। कहा जी पूजा तो यही करते थे, और फिर तय नौका मैं स्वर्ग जाऊंगा, तेरे पिताजी स्वर्ग क्यों ना गए भाई, वो नरक में क्यों गए। अब क्योंकि हमें अनजान है और जैसा हमारे अंदर जो मैटर फीड कर दिया उसके आधार पर कठपुतली की तरह चल रहे, क्योंकि हमारा स्वभाव प्रभु के पाने का है। गीता जी में मना किया है कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, ये पवित्र शास्त्र में, और इसमें जो लिखा है तुम रोज पढ़ रहे हो उसके विपरीत कर रहे हो, तो उस किसान वाले बालक बच्चे वाली बात कर रहे हो, तुम कति भूखे मरोगे। भूखे मरे तभी तो पितरा ने श्राद्ध दिए क्योंकि उनकी साधना ठीक ना बनी। अध्याय नंबर 9 का श्लोक नंबर 25 देखो, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजने वाले पितर बन जाते हैं, पितरों के पास कौन जाएगा, को देवता तो जाकर ना पितर बन कर जाएंगे, उनके टोड़ में रल जाएंगे। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों के पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, यानी भूत बन जाते हैं, और मेरा पूजन करने वाला मुझे ही प्राप्त होता है। अब विचार कीजिए, अपना पवित्र शास्त्र यानी संविधान भगवान का मना कर रहा है। अब क्या बताते हैं, ये संतजन मेरे पास एक पुस्तक रखी है बड़े बहुत बड़े महात्मा की, उसने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रखी है उसमें, कहते हैं वायु पुराण में वायु देव ने ऐसे लिखा है, मार्कंडेय पुराण में मार्कंडेय जी ऋषि ने ऐसे लिखा है, ऐसे श्राद्ध निकालने चाहिए, 5 ब्राह्मण बुलाने चाहिए, 2, 4, 5, 7 इस तरह की, और ऐसी विधि बता रखी है। अरे तेरा गजब हुई हो। अब देखो एक किसी ऋषि की या देव का जो आदेश है वो हमने नहीं मानना। क्यों नहीं मानना, क्योंकि हमने प्रभु का आदेश माना। इसमें गीता जो है खुद भगवान ब्रह्म ने बोली है, अब ये ऋषि और देवता उसी के पुजारी हैं। अब जैसे किसी थानेदार का कोई दोस्त था, पुराने समय की बात है, एक दिन वो अपने दरोगा जी थानेदार यानी SHO के पास जाकर कहने लगा, दरोगा जी मैं तो बहुत दुखी हो गया। उसने पूछा भी क्या बात है दोस्त, ऐसी क्या दिक्कत है बता, मेरे क्षेत्र में तुझे दुख हो गया। अखां जी एक पड़ोसी है ना मुझे बहुत तंग कर रहा है, शराब पी कर गाड़ी देख दे नंगा नाचन लग जा है, मेरा तो जीना आराम हो गया। अब वो थानेदार दरोगा जी बोला कि मार उसका लठ माफ देख दूंगा। अब उसने थानेदार का ऑर्डर ओबे कर लिया, आदेश मान के अर्जन थे उसका लठ ठोक दिया और लठ लागते मर गया। मर गया तो वो ही थानेदार जो है उसको हथकड़ी लगाकर अपने दोस्त को और फांसी की सजा हुई इसको। फिर आप देखो जो परमात्मा, क्योंकि उसने वो जो आदेश किसका माना, उस एसएचओ का माना, और जिसका आदेश कैसा था तो संविधान के विपरीत था। ऐसा करने से उसको 302 धारा लगनी थी और उसने मूर्ख ने कह दिया मार लठमार देख लूंगा, क्यों अपनी प्रभुता जमाए रखने के लिए। उसने नोना गिरा था, जो तेरी थर्ड मर उसका कसूता मार देगा, वो मर गया। आपका अंदर ठोका है उसने, वही आदेश देने वाला। तो क्योंकि वो संविधान, वो राजा का संविधान है जिसको तोड़ नहीं सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, और कोई अपनी तरफ से आदेश देता वो शास्त्र विरुद्ध यानी संविधान के विरुद्ध होने से हानिकारक है। आपको मार्कंडेय पुराण दिखाता हूं। मार्कंडेय पुराण में रुचि नाम का ऋषि है, उसने वेदों को पढ़ा और वेदों को समझा कि ये अनुपासना, ये कर्म कांड, श्राद्ध निकालना, पितृ पूजना, मूर्खों की कति, कर्महीनों की पूजा है, एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तो ऋषियों ने अभी तक एक परमात्मा ना पाया, वो कौन है? इन्होंने ब्रह्म को पूर्ण ब्रह्म मानकर, ओम नाम का जाप ब्रह्म का है, ये पूर्ण ब्रह्म का नहीं है, ओम नाम के जाप को पूर्ण ब्रह्म का अपनी सोच से समझ कर ओम नाम का जाप करने लगे, ऐसे रुचि ऋषि। तो वो कहते हैं जब वो 40 वर्ष का हो गया ना रुचि ऋषि, उसके पिछले 4 पितर दिखाई दिए, चार पितर, पिताजी, उसका दादाजी, फिर परदादाजी, चौथा दादाजी, और चारों जब दिखाई दिए रुचि ने कहने लगे ऊपर आकाश में कि बेटा रुचि तूने विवाह क्यों नहीं करा, उसने शादी भी ना करवाया, बेचारे ने कोई पीछा छुटवा यहां से, कितने जन्म हो गए शादी करते कराते, इन बच्चे की परवरिश में ना जाने कब मर जाते हैं, बुरा हाल होता है, ये सब निष्कर्ष निकाल के उसने शादी भी ना करवाई थी। तो वो चारों पितर बोले अग बेटा रुचि तूने शादी क्यों ना कराई, ब्याह तो बहुत अच्छी बात हो सह भाई, फिर उसके कारण ग्रस्त जीवन में पितरों के लिए श्राद्ध निकाला, भूतों की पूजा करे, तिथियों की सेवा करे, उस तो बोला पवित्र लोकों में फल मिलते हैं उनको जाकर। अब रुचि ऋषि कहने लगा पितामह हो हे दादे पड़दादो, वेद में तो इसको मना किया है कि ये मूर्खों की पूजा है, श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, पितर पूजना। तो पितर भी कहते हैं क्योंकि वो ऋषि थे पहले के वह भी, लेकिन अब क्या चक्कर पड़े, हम पढ़े तो वेदर करें उसके विपरीत, ज्ञान तो है आपको भी, लेकिन आप कर रहे हो साधना वही जो परंपरागत लोग देखम देखा लोग कर रहे थे, जो सोचो कहीं यह ठीक हो और वेद गलत हो, इतना भी बोझ आपके दिमाग पर नहीं पड़ता। तो उन्होंने भी पूजा वही की जो रुचि वो पहले कर रहा था करते थे उस जिसके कारण, और वो सारे भूत बन गए पितर। पितर एक सुपीरियर क्वालिटी के भूत होते हैं, तो वो भी प्रेत ही, तो चारों भूत बन गए, प्रेत बन गए, पितर बन गए। कहते हैं फिर ने कहा बेटा यह बात तो सही है, वेदों में लिखा तो ऐसा ही है कि विसरा स्रोत निकालना मूर्खों का काम है, इसमें तो कोई संशय नहीं। और फिर क्या रहेगा, जब वेद मना करते हैं तो भगवान का संविधान प्रभु का, फिर अपनी अटकड़ लगाते हैं वह सचो वाली, कहते हैं फिर पितर ये कर देते हैं, पितर वो कर देते हैं, पितर धन दे देते हैं, पितर पुत्र दे देते, आप तो भूखे मरे, अपने श्राद्धा की प्रार्थना करें, और वो औरों क्या दे देंगे, देखिएगा मार्कंडेय पुराण। अब जब तक हम इन बातों का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तो हम ऐसे ही एक दूसरे के अटकाए अटके रहते हैं। अब जब शास्त्रों को देखकर भी मन नहीं मानेगा तो फिर आप भक्ति के योग्य नहीं है। अब क्या कहने लग जाएंगे नादान संत, कहते हैं ये सब गपौड़ मार रखे हैं इनमें शास्त्रों, ठीक है भाई, क्योंकि वो काल के दूत आए, मैं अभी इस कथा सुनाऊंगा आपको। अब देखिएगा ये गीता प्रेस गोरखपुर से मार्कंडेय महापुराण, मार्कंडेय ब्रह्म प्राणांक, 21वां वर्ष विशेषांक, कल्याण कार्यालय गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 237 पृष्ठ पे स्पष्ट लिखा है, ये मैंने आपको कथा सुना दी, शंका हो तो घर पर जाके इनको पूरी देख लेना, लेकिन यहां इतना समय नहीं होता कि सारे चैप्टर सुनाऊं पढ़ के, जो आंशिक अंश है वो दिखाने जरूरी है। यहां देखिएगा, पितर बोले रुचि से बेटा विवाह सर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, तूने वो ब्याह क्यों नहीं किया, ग्रस्त वर्ष समस्त देवताओं पितरों ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोगों को प्राप्त होते हैं, वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, शब्दा शब्द से पितरों को तथा अन्न दान बलि विश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों को अतिथियों का उपास उनका भाग समर्पित करते हैं। ऐसा हम बेटा ऐसा हम मानते हैं, गृहस्थाश्रम को स्वीकार करो। अब यहाँ रुचि बोला, देखो ये ऊपर चारों भूत दिखाई दे रुचि को, अब चार पिछले पितर किसी ने दिख जा कड़ जा फट जा ना चाहे तो भी करना पड़े बेचारे ने। अब ये आप तो दुखी हुए थे गलत साधना करके ये बेटा और बड़ो लिया। अब क्या बताते है नीचे देखिए रुचि बोला, रुचि ने पूछा पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा है, मूर्खों की भक्ति, मूर्खों का कर्म बताया, फिर क्यों आप लोग मुझे इस मार्ग में लगाते हो। पितर बोले यह सत्य है, कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर के रह गया भाई, फिर तो बकवाद रहेगी इनकी जो अपने अंदर भरी थी। वह जब वेद एक फाइनल अंतिम शास्त्र है और इसमें लिखा है गलत है तो गलत है, फिर के रह गया, फिर तो ऐसा चौड़ा वो है आदेश है जिसके कारण फिर ये सारे भूत बने। फिर इनके पितर इनके श्राद्ध निकालो और फिर कौवा बन जाओ, उसने फिर कहें ये टू ये खिलाओ रोटी। अब देखो हमने इस पवित्र शास्त्र का आदेश मानना है, जो हमारे पवित्र शास्त्र चारों वेद उर्फ गीता जी, ये किसी मजहब का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, ये तो उन धार्मिक व्यक्ति जो प्रभु की प्राप्ति चाहते हैं उनका कल्याण के लिए एकमात्र शास्त्र है। ये उस समय रचना हुई थी पवित्र शास्त्र गीता जी की, कि ना कोई हिंदू था ना मुसलमान सिख ना ईसाई, केवल शास्त्र अनुकूल यानी आर्य लोग हुआ करते थे। उन आर्यों में त्रुटि हुई वेदों को न समझने के कारण ही उनको कलयुग में ये नाना पंथ चलते गए बनते गए। अब ये दास कथा सुनाता आपको। एक मेरे पूज्य गुरुदेव हरियाणा के अंदर जिला भिवानी में एक पैंतावास गांव है, बड़ा पैंतावास, दादरी और भिवानी रोड के ऊपर एक मेन गेट सा बना, उससे आधा किलोमीटर के अंदर पर गांव स्थित है। उस गांव के रहने वाले मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी महाराज थे। उनका बचपन का नाम हरद्वारी था, ब्राह्मण कुल में जन्म था। जैसे ये सामाजिक फीत की जो लगी हुई है ना जाति की, वैसे तो ब्राह्मण की बहुत बड़ी व्याख्या होती है, बहुत अलग से व्याख्या होती है, फिर भी परम्परागत वो ब्राह्मण जाति से संबंधित थे। उनको भी ऐसे एक उनके हमारे दादा गुरु मिले थे तो उनको बहुत समझा था, काफी समय के बाद उनका यह बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद इतनी लो लाग गई, 16-17 साल की उम्र में घर त्याग कर चले गए, पाली जा करके गऊओं के, पहले 5-7 तो कक्षा पढ़े थे, 7-8 तक तो पढ़े, फिर वो पाली जान लग गए। जैसा गांव में पहले व्यवस्था होती थी, आज से सैकड़ों वर्ष पहले की बात है। आखिर में इतनी लो लग गई कि घर त्याग कर अपने कपड़ों को फाड़ कर जंगल में डाल गए कि घर वाले पीछा छोड़ देंगे, और पहुंच गए गुरुदेव के पास हरिद्वार में। पीछे से घर वालों ने उसकी ढूंढ की, देखा तो कहीं नहीं मिला। आखिर में ढूंढते वो कपड़े पाए, वो कपड़े भी कहां डाल रखे थे, कोई किसी हिंसक प्राणी ने कोई दूसरा प्राणी पशु खा रखा था, कोई गिदड़ गुदड़, और उसके अस्थियों के ऊपर डाल गए। और वो घरवाला ने देखा भाई सारे रिश्तेदारी में भी घूम आए, कहीं नहीं आया, शाम ना आया ना सुबह आया नहीं। अगले तीसरे चौथे दिन जाकर वो जंगल में घुसे, अब किसी ने आओ देखा ना ताओ देखा, भाई ये लड़का तो यहाँ खा लिया, किसी ने ये किधर चंदे चुंदे लेने गया होगा अंदर, बच्चे ऐसे जाते थे जंगलों में। फटाफट उसको बांध कर उसकी गठड़ी सी और दरकर सर पर बनाकर थी और फूंक दिए, यानी शमशान घाट पर सवा कर दिया। फिर शुरू हो गए उसके महीना 13वीं करी, फिर महीना किया, फिर तो पहले तो गणेला टोटर होया करते हर महीने और एक वर्ष तक लगे रहा करते, और फिर हो गए श्राद्ध शुरू। और जब वो परमात्मा तुल हुए महापुरुष अपने सतलोक जाने की तैयारी करने लगे, जब कतिगर्द हो गए थे, 105-6 साल की उम्र होगी थी उनकी, और उनके चार आश्रम, एक तो नजफगढ़ दिल्ली में, एक फिरोजपुर जिला के अंदर तलवंडी भाई, एक मोगा में, खन्ना में, चार तो उनके आश्रम चल रहे दुनिया का उद्धार करें, और उधर से उनके फ्रेंड बनवाए जा रहे, उनके क्या नाम श्राद्ध निकाले जा रहे। वो चले गए अपने सेवकों के साथ पैतावास गांव में, सारे गांव में ये हो गया था कि हरद्वारी मर चुका है, और वो पहुंचे ना गांव में, सारा गांव देखना है हरद्वारी तो जीव है, जाते बता दिया यहाँ मेरे ताया का मकान था, ये मेरे चाचा का मकान था, मेरी ताई ऐसी थी, ये थी, सारे बता दिए। सारा गांव हैरान रह गया, अक वाकई तो वो का वो है। अब मुझे पता चला दास को भी सत्संग किया करते थे घर घर गांव गांव में जाकर, तो मैं भी पहुंच गया दर्शनार्थ। उसके बाद जब गुरुदेव से मिलने के उपरांत उनकी एक भाभी बैठी थी, उन्होंने कहा कि मेरी 92 वर्ष की उम्र होगी, 92 वर्ष की। मैंने उससे कहा माई जब हमारे गुरुदेव यहां से चले गए थे तो आपने कैसा महसूस किया इनके बारे में? वो बुढ़िया कहने लगी भाई के बताऊं, मैं जब आई ना ब्याई तो मुझे तो इसके श्राद्ध निकलते पाए थे, और मैं बोली 70 श्राद्ध तो मैंने अपने हाथ से निकाल रखे हैं, और बताऊं मैं कहा बता कि कभी कोई भैंस बीमार हो जाती या कोई गाय का तकलीफ हो जाती या खेती ना होती तो मैं जाया करती इनके पास, जो इन ब्राह्मणों के ओर होया करो वो खाल तारणी वो न्यारे जो ज्योतिष का डिलिए उनके पास जाती थी, तो वो गुरु जी ने कहा करके तेरा पिता थारा एक बेऔलाद मर रहा है, तुम्हारा कोई नी संतान मरा हुआ है, सबको पता होता सबके घर में कोई न कोई पहले नी संतान ना जाने कितने मरिया करते, पहले जो है ना चार चार पांच पांच लड़के होते एक ब्याह जाता बाकी नी संतान ना मरिया करते, तो ये उन अटकल बेरा था वे जो बे संतान मर गया कहते वो पत्र बन गया और वो तुमने घना दुखी कर रहा है, तो उसके समाधान के लिए क्या बताते थे कि 500 लत्ते रख दो हमारे को दे दो और 11 रुपये रख दो, उसमें 11 रुपये आज के 11,000 के करीब थे 11 रुपये, ने बोले जी वह भी रख देते और फिर ने बोले मंडी बना दो वह भी बना दी, ना आराम होया, ने बोले के जेठ में नवाइयो इसको ज्यादा गर्म हो रहा है, निकल ज्येष्ठ में ठंडे पानी से 21 दिन न लाना इसको सुबह सुबह मंडी को, ये शांत हो जाएगा, ने बोली वो भी करी मैंने मच्छी। फिर मैं बोला एक बात बताओ अभी देखो ये दुनिया का उद्धार करें और ये सब पाखंड नहीं था जो वो लोग आपको बहकाया करते, आने वाली जिस खेत है पाखंड है। मैं बोला फिर अब तो त्याग दो इस बुराई में, ये छोड़ दो श्राद्ध श्रोध निकालना ये तो गलत है, मैं बोले भाई या के छूटे है तो पुरानी लाग से, मैं बोला कुएं में पड़ जा, अब वो पहले तो भूत बने फिर तो और भूत नहीं बनिए, ने बोले भाई कुछ भी कर मारे पना छुटा है थरा गज वही हो आंखों देखा। कबीर साहब कहते हैं कि काहे की कुशलात कर दी वे और कुआ पड़े आत्मा टॉर्च ले रहा रोशनी रग कुआ, फिर भी ना सारे पड़ गए मैं भी पढ़ूंगा इसमें गिरूंगा, फिर टॉर्च क्या खातर ले रखी, फिर मर गिर रहे तो फिर करो उसमें कल्याण। जब शास्त्र पढ़ रहे हो शास्त्र ने रास्ता दिखा दिया अपने ने गुरुदेव ने बता दिया ना समझ माई थी कह अरे भी नो के ना नो के छूटे है तो भाई फिर उसका समाधान नहीं है वो भक्ति के योग नहीं है। ठीक है एक बार सत्संग सुने ना समझ माओ, दूसरी बार सुने तीसरी बार सुने पुस्तक ले जाओ पढ़ो सीडी देखो, और फिर हमारे जो सेवक हैं इन्हें 10-10 वर्ष हो गए जिन्हें 6-6 वर्ष 7-7 वर्ष 8-8 वर्ष 9-9 वर्ष नाम लिया हो गए, और इनसे पूछो जिन्होंने सब देवता पूजने त्याग दिए जिन्होंने सब पितर पूजने त्याग दिए इनको हानि होगी लाभ हो गया, आपकी जींद में भी हमारे कम से कम 500 घर होंगे इनसे मिलकर देखो, और पहले से इनको लाभ हुआ या हानि हुई, हरेक का 70-90% उभरा हरेक चीज में, आप इनसे मिलकर देखो तब दिल डट जाएगा। तो अब ये मार्ग मालिक ने आपके लिए प्रशस्त किया है इसको चूकना नहीं चाहिए, चूकोगे तो आप जैसे नादान नहीं फिर भक्ति आपकी चले नहीं। उसके बाद धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि इसमें लिखा कि पितृ श्राद्ध मत निकालो गीता जी में और तुम निकाल रहे हो, तो इस विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध साधना करने से तुम्हारे पूर्वज ये पितृ बने धर्मदास और अब तू भी नंबर तेरा पितृ बनने का बेसिक बात बना। अब धर्मदास इस बात से बड़ा प्रभावित तो हो रहा है लेकिन ये पुराना रंग जल्दी सी जगह नहीं छोड़ता, फिर क्या कहने लगा हम तो रामकृष्ण का जाप करते हैं भगवान विष्णु का जाप करते हैं और हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, क्योंकि वो गर्म सा हो गया धर्मदास ने सोची ये मुसलमान मने शिक्षा दे, आखिर में ये कहने लगा हम किसी जीव हिंसा नहीं करते, ये कहने के लिए कि उन्हें चुप हो जाओ तुम मांस खाते हो, हम मांस नहीं खाते तुम मांस खाते, मतलब ये उस थोड़ी सी प्रतिक्रिया की थी धर्मदास ने। देखो कबीर साहब बोले भाई बात ठीक है जीव हिंसा तो महापाप है, धर्मदास बोला जो जीव हिंसा करता है ना कभी सफल नहीं हो सकता वो आदमी, उसकी कोई भक्ति नहीं बन सकती जो मतलब بکرے کاٹتا ہے، اس کا سنکیت یہ تھا. کبیر صاحب بولے بالکل صحیح کہا آپ نے، اور جو برائی میرے میں ہوگی میں چھوڑ دوں گا، کیونکہ ویسے تو پرماتما تھے، لیکن اس کو پرسن کرنے کے لیے اگر اس برائی سے پرماتما نہیں ملنا ہے تو میں بالکل نہیں کروں گا. کرتے تو تھے ہی نہیں وہ، تو ویسے اس کی من راجی کرنے کے لیے، پرسن کرنے کے لیے کہ یہ زیادہ سا نہ غصہ ہوگا میرے تھے. پھر کہنے لگا بھی ایک بات بتا درمداس جی، آپ کہاں سے چل کر آئے ہو؟ اب درمداس کہنے لگا باندھو گڑھ سے. بتایا نا کتنی دور ہے باندھو گڑھ متھرا سے؟ لگ بھگ 800 کلومیٹر. اور وہاں سے یہاں تک کس سادھن میں آئے؟ کہ پیدل چل کے آیا ہوں میں، پیدل یاترا کر رہا ہوں. اب وہاں سے لے کر یہاں تک جتنے تم نے پرانی اپنے پیروں کے نیچے سوکشم جیو بھی مار دیے، وہ بھی جیو انسا بھائی. اور اب جس تالاب میں تو سنان کر رہا تھا، اس تالاب میں متھرا کے جوڑ میں جس نے تو تیرتھ مان کا پوتر بنکایا تھا، اس میں پوتر جل میں سنان کیا تھا، اسے مکتی کی مارگ میں جان کے، اس میں نہ جانے کتنے جیو ہیں. دیکھ تیرے لوٹے میں، لوٹے کا پانی بھر رکھا تھا نا اسی تالاب سے، دیکھ کتنے جیو گھوم رہے اس میں، پرماتما کی رضا اور گنے دکھا دی اس میں. اور بیٹا جب تو اس میں سنان کر رہا تھا نا پتر، ایسے رگڑ رگڑ کے نہایا، نہ جانے کتنے جیو کا تھا کچمر کاٹ دیا، اور نہ جانے کتنی ہتیا کر دی. اور تو نے جو یہ استھان لیپیا ہے نا جس کے اوپر یہ آرتی ورتی یہ روٹی بناتا ہے تو، اس میں اتنے جیو ہنسا کر دی تو نے. کیا بتایا؟ ستر براہمن کی ہے ہتیا جو چونکا تم دیو نیتا، براہمن سینس ہتیا جو ہوئی جل اسنان کرت ہو سوئی، پرتھوی اوپر پگ جو دارے کروڑ جیو ایک دن میں مارے. پھر بتا نادان تیری مکتی کیسے ہوگی؟ جیو ہنسا کرنے والے کی مکتی نہیں ہوتی، تو نے تو ظلم کر رکھا ہے. اب دیکھو پتا کا چاہے تو بڑا پتر مار دے، ارچے چھوٹے کی ہتیا کر دے، دونوں کا دکھ برابر ہو ہے، اور دونوں کی برابر سزا ہوتی ہے سرکار کے اتہاس میں قانون میں. اب درمداس کہنے لگائی تو سوچا ہے تو بڑا استاد آدمی، تو کہنے لگا اس کا مطلب بھائی ہم نے جان کے تھوڑے مارتے ہیں تو ویسے انجان پڑے میں مر جاتے ہیں. کبیر صاحب بولے بالکل ٹھیک ہے، دیکھو آپ کا اتہاس آپ کے بھگوان کا برہم تک کی سادھنا، پر برہم تک کی سادھنا کا یہ پرتیفل ہے کہ جیسے کرم پرانی کرے گا دونوں بھوگنے ہوں گے. جیسے پن بھی الگ اکاؤنٹ ہے پنوں کا، ڈیبٹ اور کریڈٹ الگ ہیں، جو پن ہے وہ الگ اکاؤنٹ بنے گا اور پاپ کے لیے بیٹا نیارا بنے گا. جیسے ایک لائسنس بنایا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اتھارٹی ایک نیوکت کی جاتی ہے، ڈرائیونگ لائسنس یعنی چالک کا ایک پرمان پتر ہوتا ہے جو گاڑی چلانا ہوتا ہے، جس میں اس کو بنانے والا جب بنا کے دے گا ادھیکاری، پہلے اس کو خوب ٹریننگ لے لے گا کہ وہ صحیح ڈرائیور ہے کہ نہیں، اور پھر وہ لائسنس بنا کر دے دے گا، پرمان دے دے گا کہ ڈرائیور صحیح ہے، یہ گاڑی چلانا جانتا ہے، تو پھر اس سے اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ دوشی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ چالک ہے اور کہ نہیں، اور ستھتی میں ہو گیا تو وہ ویوش ہے. اور ایکسیڈنٹ ہو گیا اور جس کے پاس چالک کا یہ پرمان پتر ہے نہیں، تو سیدھا پہلا دوش لگ گیا اندر ہو جائے گا کہ تیرے پاس یہ ادھیکار نہیں تھا، تو نے گاڑی چلائی کیوں. ایسے ہی جن کو گرو دیو کا نام مل گیا پورے گرو تھے، تو ان پہ ان پاپوں کا دباؤ نہیں ہوگا، کون سوں کا؟ جو جان کر نہیں کیے جاتے، انجان پنے میں پیروں کے نیچے آ کے پھر مرتے ہیں تو آپ پر دوش نہیں. اور جب تک آپ کو پورے سنت اور پورن پرماتما کا نام نہیں ہے تو سمجھو آپ پر دونوں آپ کے اکاؤنٹ بن رہے ہیں. اب آپ کے من میں یہ آوگی ہم نے گرو بنا رکھے ہیں، ہم بھی گرو بنا رہے ہیں، ہم نے بھی گرو بنا رکھے ہیں، ہم تو ٹھیک ہے نا، ان گروہوں تو بات نہیں بنا دی، نہ تو بنا بیٹھے ہو کیوں؟ دیکھو ہر چیز کا، ہر کھیتر کا کوئی نیم ہوتا ہے، پربھو کے پانے کا بھی نیم ہوتا ہے. اب نکلی بھی لائسنس بنائے جاتے ہیں، اور نکلی وہ نسلیوں سے زیادہ بڑھیا بنا کے دے دیں گے آپ کو، پاسپورٹ بھی اور لائسنس بھی، لیکن وہ وقت پر کام نہیں دیں گے، اور پھر آپ کو وہ سزا جو کی تو ملے گی پوری کی پوری. اب کیسے ہے کہ نہ تو برہم کرم کاٹ سکتا، نہ پربرہم کاٹ سکتا، اور نہ برہما وشنو مہیش کاٹ سکتے. इन में वर्णित इनकी साधना से जो कर्म तुम कर रहे हो वो दोनों आपको मिलेंगे। आपने गुरु भी बना रखा है तो भी आपके ये जितनी भी हंस आपको हो रही है, पाप हो रहे हैं, इनका कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, आपने भोगने पड़ेंगे। और जो सतलोक की महिमा गाते हैं, सतलोक का सतपुर की महिमा गाते हैं, और वो नाम पांच गलत देते हैं, पांचों नाम पूर्ण परमात्मा के नहीं है, वो पांचों नाम काल के, ज्योत निरंजन निरंकार ओंकार सतनाम सोहन सोहम, ये पांचों नाम काल के हैं। ये बेसिक ये देखो ना, यही तो चक्कर पड़ेगा इस सबके सामने। हमने वो लाइसेंस है ये था, जो अधिकारी हो और वो सच्चा नाम हो तो ठीक है, नहीं तो गलत है। अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, ये कोई मंत्र नहीं किसी इतिहास में, नहीं किसी शास्त्र में। अब इन नामों के और फिर जो और दूसरे क्या देते हैं, हंस स अंदर हम अंदर, और कहते हैं उल्टा कर दे तो सोहम हो गया, हंस का उल्टा करने सोहम कर दे भी ना बने, फिर उल्टा क्यों करे, उल्टा जप लो। और सोहम शब्द लाए कहां से तुम, किसी वेद में, किसी गीता में, किसी भागवत में बताते दो हमने तुम्हारे सोहम नाम लाए तुम कहां से, उस परम पिता पूर्ण ब्रह्म ने आकर ये सोहम नाम दिया था। किसको, सबसे पहले इन्होंने शिव को दिया था। हम बैरागी ब्रह्मपद ये सन्यासी महादेव, सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छपाए। अब सोहम जो शब्द है ये दो हिस्से करके जाप नहीं होता इसका, ये नादाना की बात है। अब एक तो बंदूक हो पर एक गोली, गोली नहीं दर फेंक दे, बंदूक नहीं दर फेंक दे, ये कोई समझदारी हुई, ये भी मंत्र ठीक नहीं है। अब ये दास जब इतने बड़े माइक ला कर बोल रहा है, कह रहा है, कोई अनजान व्यक्ति ने सोचे सबकी निंदा करते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी नादानी होगी जो सत को और निंदा समझोगे। अब जैसे एक तो हजार रूपये का नोट हो, 500 का पीछे नकली नोट चला था एक बार, किसी ने गलत छाप दिए थे नकली आत्मा ने, और सरकार को पता लग गया तो टीवी पर दोनों दिखाया करते, ये ओरिजिनल है ये डुप्लीकेट है भाई, अब पहचान कर लो, कभी आगे धोखा ना खा जाओ। अब तक ठगे गए सो ठगे गए, पर आगे तो सावधान हो जाना, पहचान कर लो। और क्या गवर्नमेंट आपकी निंदा कर रही थी, आपकी जीत ऐसी थी कि मेरी ये प्यारी जनता फिर आगे धोखा ना खा जाए, अभी संभल जाए और पीछे लुट ली सो लुट ली। फिर आगे बता परमात्मा ने कि जो हो जो जन होगा जो हरी वो लेगा शब्द मिल गाये, और सोहम सोहम जप मरे भाई व्यर्था जन्म गवाया। तो एक और मंत्र है, अकेला सोहम भी नहीं है, एक और मंत्र है, इन दोनों के मेल से एक सतनाम बनता है। और अगर वो तीसरा मंत्र के साथ नहीं लगा वो सारनाम, तो ये दोनों गलत हैं, दोनों व्यर्थ हैं। जैसे हमने कुएं नलका लगाना है, हैंडपंप लगाएंगे, बोकी मार मार कर पाइप पहुंचाएंगे नीचे, ये तो सतनाम का काम है, उस श्वास के सीमेंट का। और फिर ऊपर सारनाम का क्या काम होगा, उसको हैंडपंप लगाया जाएगा, हैंडपंप नहीं है तो वो पाइप गलत वे जोजलस, और वो नहीं लगने इतने वो नहीं, तो इसलिए परमात्मा कहते हैं। अब ये जब आप गीता में भी तीन मंत्र के जाप का प्रमाण भी दिखाऊंगा आपको, ये और शाम वेद में भी तीन मंत्रों के नाम का जाप है वो प्रमाण है, लेकिन ये तीन नाम ये नहीं अकाल मूर सब स्वरूप राम और ये सतपुरुष, ये तो उस परमात्मा की केवल महिमात्मक नाम है। एक पानी के तीन नाम धर ले, जल पानी नीर, जल पानी नीर, नो करें जा क्या पानी मिल जाएगा, वो तो प्रोसीजर न्यारा है उस पानी को प्राप्त करने का, वो हैंड पंप लगाने के वो मंत्र न्यारे हैं। उस जल पानी नीर को तो हमने पाना है, अकाल मूर्त को तो हमने दर्शन करने सतलोक में जाकर, वो मिलेगा कैसे, उस तीन मंत्र के हिसाब से जो दास बताओगा। प्रमाण दूंगा आपको 20 जगह, उन महापुरुषों के प्रमाण दूंगा जिन्हें सचखंड में परमात्मा के साक्षात देखा और फिर बताया कि हमने ये मंत्र जपा तो परमेश्वर पाया, नहीं तो सब मंत्र व्यर्थ है। कोट नाम संसार में इनसे मुक्ति ना हो, और सार नाम मुक्ति का दाता, वाकू जाने ना को। अब कहने का भाव ये है दास का, अब जितने भी पूजाएं आप लोग कर रहे थे चाहे किसी भी आधार को मान गए, उनमें आपको धर्मदास को बता रहे हैं, धर्मदास तुझे मान लीजिए तीर्थाने का पुण्य तो एक हो गया और पाप हो गए करोड़, तो बेटा दोनों भोगने पड़ेंगे तुझे। अब आपको एक इतिहास दिखाता हूं जैन धर्म का, कालजा पाठ जाएगा आपका। अभी तम बोले थे अनजान बालक,
ہمیں آپ نہیں معلوم تھا ہم کیا کرنے جا رہے ہیں.
آپ کو جین دھرم کا اتہاس دکھاتا ہوں, اور یہ اتنے اچھی آتما لگی مجھے یہ زین دھرم والے, بلکہ بوڑے بڑے نہ جو کچھ سواستوکتا تھی جو کی تو لکھ دی, باقی نہ تو گما گما کے لکھ رکھی اپنی. انہوں نے بالکل صحیح لکھا ہے جو مجھے بہت پسند آیا ان کی کہانی, اور یتھارتھ لکھا ہے انہوں نے. یہ شری مہاویر جین جی کو سب سے انتیم تیرتھکر مانتے ہیں. یہ دیکھیے گا جین سنسکرتی کوش, جین اتہاس سنسکرتی کلا ایوم پراتو, یہ کہاں سے پرکاشت ہے؟ یہ ہے پروپرائٹر ہے بھاگ چندر جین بھاسکر. اب اس کے اندر دکھاتے ہیں آپ کو. رسب دیو جو تھے مہاراج جی, رسب دیو جی یہ سب سے پہلے تیرتھکر مانے جاتے ہیں. سب سے پہلے تیرتھکر اس جین دھرم کے رسب دیو مانے جاتے ہیں. اور رسب دیو سے اپدیش پراپت ہوا تھا کس کو؟ اس مہاویر جین کی آتما کو, رسب دیو سے. رسب دیو کا پوتر جڑ بھرت اور بھرت کا پوتر ماریچی, اور ماریچی کی آتما کو رسب دیو جی نے پہلا آدمی تھا, پہلا ہنس تھا جو رسب دیو کا پوتا ماریچی, جس کو 1000 ورش کی تپسیا کے بعد رسب دیو جی نے جب منتر دیا تھا وہ دکشا دی تھی, اور اس دکشا اس ایسے مہاپرش سے ان اپدیش لینے کے بعد اس مہاپرش کو کیا کیا ہوا آگے اس کے جیون میں, وہ کتھا سناتا ہوں آپ کو. آپ کا کرجا پاٹ جا جب بھکتی ادھیکاری یا کوئی بھکتی اب دھیان ہوگا, کیونکہ ابھی تو آپ بالک ہو, بالک نادان بالک جو ہے نا سرف پکڑ لے تو ڈرے نا, کاٹ تو بیسک لے اس نے, اگنی ماں دے دے تو بہنی, تار پکڑ لے بجلی کا تو ڈر کوئی نہیں, کیونکہ اس نے آپ نہیں معلوم یہ خطرناک وسط ہے. جب گیان ہو جائے گا پھر دیکھو کتنے ڈر لگے گا آپ کو. تو ابھی تک آپ بالک ہو, ابھی بچے ہو, چاہے کتنی کوئی بات بناو چاہے میں رشی کباب ہے, پر اس کال کے ہی برہم تک کی سادھنا کے اندر آپ ابھوت بچے ہو. اب دیکھیے اسی جین دھرم سنسکرتی کے اندر یہ کہاں سے پرکاشت ہے, یہ بھی دیکھ لو. پرکاشک ہیں پرمیشور شنکر, پریم شنکر دویدی, مانو ندیشک کلا میں مارک سوگ سنتھان 3/33/33 اے نو ساکیت کالونی بی ایچ یو وارانسی. اب دیکھو تھوڑا سا ہنٹ یہاں سے دوں گا, پھر ان کا ایک اور شبد ہے وہاں دیکھیے نیچے دیکھو 176 پرشٹ ہے یہ 175 پرشٹ پہ نیچے دیکھیے. رسب دیو کے پوتر ماریچی, اس طرح رسب دیو کے وشے میں نشتر روپ سے کہہ سکتے ہیں کہ رسب دیو کے پوتر ماریچی بھرت کے پوتر کو پرانوں کے ویدک دھرم کا پرورتک مانا گیا, اور یہاں یہی ماریچی جین پرمپرا کے آگے چل کر مہاویر وردمان بنا. اب اس کے ساتھ کتنے ڈڑے ڈوئے اس پیاری آتما نے پربھو کی طرف میں, اور غلط سادھنا برہم تک کی کال تک کی سادھنا کر کر کے. اب اس کو رسب دیو سے دکشا پراپت ہوئی. یہاں دیکھنا 177 پرشٹ پہ نیچے ادھر لانا پہلے 76 پہ. تیرتھکر رسب دیو انتیم کلکر نابھی راج پوتر کے پوتر تھے, ماتا مرو دیوی تھے, وہ اکسواکو ونسی نابھی راج ایودا کے ایک لوک پریہ راجا تھے. ترون ہونے کے کارن دو سادیاں کی بھرت सुखमंगला से भरत सहित 99 पुत्रों का जन्म हुआ, 2 पुत्री, एक ब्रह्मी पुत्री का जन्म। समय आने पर ऋषभ देव ने भरत को अयोध्या का, बहुबली को तिक्षकला का, इनको सबको शासन देकर अलग अलग पुत्रों को राज बांट कर, और स्वयं ऋषभ देव ने प्राणी पात्री ऋषभ देव एक वर्ष तक निराहार रहे, यानी कति कुछ भी नहीं खाया पिया। आगे देखो, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा आपको। फिर 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभ देव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया, धर्म देशना प्रारंभ की। प्रथम धर्म देशन यानी दीक्षा नाम देना प्रारंभ किया, भरत के पुत्र मारीची को दी, और वही 2400 तीर्थकर महावीर बने। अब इसके बीच की वीरानमैटी देखो, इस महावीर जैन की फिर क्या हुई। अब ये चक्र पड़ा हुआ है कि दास बतावे इतिहास जो का, तुम अपनी तरफ से एक शब्द नहीं मिलाता, जो तुम्हारे महापुरुषों ने सभी पंथों के ना जो अपनी कलम से लिखी है वो दिखा रहा हूँ, और फिर भी किसी के पेट में दर्द होगा भी क्यों दिखावा, हमारे गुरुजियां की ये निंदा करते हैं। कमाल की बात, इसमें लिखा हुआ है निंदा के, अगर मैं ये कहूँ ना ये बहुत निकम्मे हैं, ये लोटेरे हैं, चोर हैं, तो मेरी निंदा हुई। परमात्मा इससे अच्छा पहले मेरी जीभ काट दे, किसी की निंदा कर दूं तो। मत ये सच्चाई बताऊं, इसमें ये लिखा तो देख लो, इसका प्रतिफल तुम्हें क्या होगा, जब ऐसे महापुरुषों की हालत हुई है तुम इससे भी। आज के जो संत है वो ऋषभ देव जैसे नहीं हो सकते, ना जैनी ना दूसरे बिना जैनी, चाहे वो सतलों की महिमा गाँव चाहे किससे, वो तो संत परमात्मा नारा भेज जाकर। अब देखिएगा, आओ जैन धर्म को जाने, जो की तू कथा जो इसमें लिखी है, जो उसी में जो कहा तू इसमें बड़ी सिस्टमेटिकली सीधी लिखी है, जो आसानी से समझ में आओगी। आओ जैन धर्म को जाने, या नीचे देखो, प्रवीण चंद्र जैन एमए शास्त्री, देख कितने विद्वान बेवकूफ हुए बैठे, एमए और शास्त्री, और ये कथा लिखा अपने कलम से, अर्बुद्धि में काम बिल्कुल नहीं आती, कथारा के बनेगा आपका क्या बनेगा, ये देखियो। आओ जैन धर्म को जाने, लेखक है प्रवीण जैन चंद्र जैन एमए शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर मेरठ। अब देखिएगा, इसके 294 पृष्ठ प्रारंभ करते हैं। यहां से शुरू करते हैं, इसमें प्रश्नोत्तरी लिख के बड़ा सीधा सा ज्ञान दिया है। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है। अब मारीची से पहले ये एक भील था, जब ऋषभ देव का पोता हुआ उससे पहले ये भील था, और उस भील को किसी व्यक्ति ने संत ने रास्ता बताया, तो पुरवा भील के बाद वो क्या हुआ, पुष्पकलावती देश की पुंडरीकरणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनि से मद मास मधु त्याग कर व्रत लिया था, यानी उपदेश लिया था, उसका जीवन पर्यंत पालन किया। फिर महावीर श्री महावीर भगवान का जीव पूर्वा भील की प्रिया से यानी उसके शरीर से कहां गया, पहले 100 धर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हो गया, और फिर वहां से कहां गया, भरत चक्रवर्ती की रानी अंतमती से मारीची नामक जेठा पुत्र हुआ, ज्येष्ठ पुत्र हुआ, और मारीची का प्रिय फिर कहां गया, एक फिर ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। महर्षि ऋषभ देव से उपदेश होने के बाद उस प्यारी आत्मा ने भक्ति की अच्छी, उस भक्ति के फल से तो स्वर्ग मिल गया, और पाप ज्यों के त्यों संग्रह होते रहे वो न्यारे हैं। आगे देखियो, फिर ब्रह्म स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव कहां गया, अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ, फिर कहां गया, एक सागर की आयु वाला देव हुआ, फिर कौन बना, फिर अग्निशय नामक एक पुत्र हुआ, फिर कहां गया, फिर स्वर्ग गया। स्वरूप के पर्याय से महावीर जीवन का जीव भगवान का जीव किस पर्याय में गया, भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में एक अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ, फिर कहां गया, फिर एक महेंद्र स्वर्ग में गया। महेंद्र स्वर्ग के बाद महावीर जैन की आत्मा कहां गई, मंदिर नगर में सालक ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ, भारद्वाज ऋषि हुए ये, भारद्वाज के बाद इसका कहा गया महेंद्र स्वर्ग में, और महेंद्र स्वर्ग से कहा गया कि नोगेदिया सागर की आयु वाला जीव हुआ के निकलकर महावीर जैन का जीव कहा गया, अनेकों भाव धारण किए, मेरे शरीर धारण किए, कौन कौन से, 1000 बार आग का वृक्ष, 80,000 बार शीप के भाव,
20,000 बार नीम के जीवन, 90,000 बार वृक्ष के जीवन, केले के वृक्ष के जीवन, 3,000 बार चंदन के वृक्ष के जीवन, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के जीवन, 60,000 बार वैश्या, 5 करोड़ बार शिकारी, 30 करोड़ बार हाथी और 60 करोड़ बार गधा, ए परमात्मा, और 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री, 90 करोड़ बार धोबी और 8 करोड़ बार घोड़े, 20 करोड़ बार बिल्ली, ए परमात्मा, 60 करोड़ बार गर्भपात के मरने, ए मालिक मेरे, मैं आपको सुना रहा हूँ, मेरा कलजा पाटन न हो रहा धर्म तो बताऊ, 80 लाख बार देव परिवार को प्राप्त हुआ, 80 लाख बार तक देव स्वर्ग में भी पहुंच गया, देवता भी बना, और फिर ये दुख नो के नो, क्योंकि यहाँ से ब्रह्म और परब्रह्म, ये तो ब्रह्म साधक थे, और आप तो ये ब्रह्म विष्णु महेश्वर माता के पुजारी, आपकी क्या हालत होगी, अरे नकली सतलों की महिमा गाने वाले के नकली नाम जाप करनी है, जिन कल परसों दिखाया था आपको सारा इतिहास इन महापुरुषों का, आगे क्या हुआ, फिर उपरोक्त भाव के प्राप्त महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, राजगृह नगर में सथावर नाम एक ब्राह्मण हुआ, फिर सात आगर की साई वाला देव हुआ, और फिर कहा गया विश्वनंदी नामक पुत्र हो गया, फिर कहा गया एक महाशुक्र स्वर्ग में गया, त्रिपुटी नामक नारायण हुआ, फिर सातवें नरक में गया, या उरहरी थी कसर नरक वाली, सातवें नरक में गया, सातवें नरक से महावीर जैन कहा गया, एक शेर बना, सिंहगिरी पर्वत पर शेर हुआ, और फिर नरक में गया, ओए परमात्मा, फिर नरक से निकल कर महावीर का जन्म कहा गया, हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ, उसको अतिंज जय एवं अमित गुण नामक मुनिरा संबोधित किया, सिंह से फिर कहा गया, फिर स्वर्ग में गया, देव हुआ, फिर कहा गया, फिर कनकोज नामक पुत्र हुआ, और फिर स्वर्ग सातवें स्वर्ग में गया, सातवें स्वर्ग से फिर कहा गया अयोध्या नगरी, ऋषण नामक पुत्र हुआ, और फिर स्वर्ग में गया, और फिर उस ये पितर नामक चक्रवर्ती राजा हुआ, और फिर स्वर्ग में गया, फिर जम्बूद्वीप मत अंदर फिर क्या हुआ, एक नंदी नामक पुत्र हुआ, और फिर कौन हुआ, वो नंद का जीव, फिर आगे कहाँ गया, 24वां तीर्थ कर महावीर हुआ, ये भी महावीर जिसकी ये पूजा करें जैन धर्म या धर्म, ये के दुर्गति कर का जो ऐसे महापुरुष से उपदेश जिसे एक नंबर के संत जो जिससे धर्म प्रवर्तक माना जाता जैन का, और उससे नाम लेने के बाद इस प्यारी आत्मा की कितनी दुर्गति हुई, अब देखो फिर महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए, पाखंड है ये जितनी पूजा करे जैनी, ये खुद अपनी लेख में लिख रहे, पाखंड मत चलाए, कितने चलाए कि 363 पाखंड मत चलाए महावीर ने, ए परमात्मा, और इसके पीछे लग रहे सारे, और स्पष्ट लिखा है, तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा दास, ये आपके सामने इन्हीं के करकमलों द्वारा ये लिखा हुआ है, अब ये इन्हीं का नहीं, आपके साथ भी सबके साथ ऐसी बनी हुई है, क्योंकि जो भी जो पूजा कर रहा है अपने को कति 100% सही मान कर रहा है, अगर जिस दिन ये पता लग जाएगा कल जा बैठ जा और छुआ भी देगा आप इस मार्ग को, अब देखो कितना समय लगेगा समाज को शाणा बनने में, क्योंकि हजारों वर्षों का अंधेरा ठोक रखा, और फिर ये महापुरुष उसी कुएं में डाल रहे थे जहां से निकालना चाहिए था। अब ये दास जो आपको बताना चाहता है, और साथ में अनजान व्यक्ति इसको नंदक भी कहते होंगे, कहो, मैं तो ये कहता हूं, अगर कोई देखो, मुझे भी बड़ा दर्द हुआ था जो पहले मेरी क्रिया को किसी ने बुरा बताया था, मेरे गुरुदेव ने जब ये कहा था तो मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि उनसे पहले किसी ने ये नहीं कहा था तुम भाई गलत जा रहे हो, सब ठीक, जो यूं कहा करते बहुत अच्छी बात है भाई, जो पूजा करता ठीक है, संत सब बराबर होते हैं भाई, सबका उद्देश्य एक ही है, भगवान के पास जाना है। अब जब उनका ये ज्ञान हृदय में समाया, उसके बाद दास को भी पता है कि मैं किसी को कुछ कहूंगा किसी के बारे में, एक बार दर्द जरूर होगा, और मैं तो ये कहता हूं ये दर्द होगा तो आपका काम आवेगा, आप कम से कम चिंतित तो होगे, मान लीजिए मैं आपके 1,000 के नोट को और नकली बता रहा हूं, या ये बता रहा हूं भाई 1,000 का नहीं 10 रुपए का है, तो चिंता दो कारण से होगी आपको, एक तो इस कारण से होगी कि जो आपके पास नोट है आप उससे पूर्ण परिचित नहीं हो कि वास्तव में ये 1,000 रुपए का है नहीं, यह नकली है, आपको भी ज्ञान नहीं, आप इतने ज्ञानवान ही हो,
اور دوسری یہ ہوگی کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا یہ 10 کا ہے یا 1000 کا ہے، اتنے ابھود ہو. یدی آپ کو کانفیڈینس ہے کہ میں جو مجھے پراپت ہے جو نوٹ یہ بالکل صحیح ہے، تو آپ کو چنتا ہو ہی نہیں سکتی. اور چنتا ہوئی ہے تو پھر اس کا سمادھان ڈھونڈنا چاہیے. 20 تو پتا کرے، پھر آپ پتا کس سے کرو گے؟ اپنے گروؤں سے. اپنے گرو جی کے پاس جاؤ گے، دیکھا جی وہ ایسے کہہ رہے تھے گرو جی، تو وہ کیا کہے گا کہ وہ ایسے کہہ رہا اس نے کہہ بھی رہا، پھر بتائیے اس کا سمادھان کیسے ہو. اب اسی کنویں میں گرو جہاں سے نکلنا چاہیے تھا وہ تو وہیں ڈالیں گے کہ نہیں ٹھیک ہے. اور یہ پہلے ہوا کرتا ہمارے پروجوں کے ساتھ، پرماتما سوئم آ کر کے کبیر پرمیشور یہی بتایا کرتے، جو داس بتاوا آج. اس میں سب ہمارے پروج اشکشت تھے اور بوڑھی آتما تھی، ان کو گروؤں پر وشواس گنا تھا جیسے آپ کو ہے. لیکن وہاں یہ کمی رہی کہ وہ اشکشت تھے ہمارے پروج، اور جیسے گرو لوگ وہاں ستسنگ سن کر جاتے پرماتما کا، یہی ستسنگ اور گروؤں سے پوچھا کرتے گیتا میں منع کیا ہے، پتر مت پوجو شراد مت نکالو، پھر آپ ہم سے کیوں پوجوا رہے ہو؟ وہ کہتے تھے وہ کیا جانے گوارن پڑھ اشکشت، ہم کاسی ودیا پیٹھ پڑھ کر آئے، کہیں گیتا میں ایسا نہیں لکھا، کہیں ویدوں میں ایسا نہیں لکھا کہ مت دیوتا مت پوجو یا شراد مت نکالو. تو یہ وشواس ہونا بھی ان کی بات ٹھیک تھی ہمارے پروجوں کی، بھائی یہ پڑھا لکھا آدمی وہ اشکشت، یہ جلاحا کبیر، یہ کیا جانے شاستروں کے بارے میں. پھر وہ سکھ سنتوشت ہو جاتے، بلکہ دشمن بنا دیے، اس پرماتما کے دشمن بنا دیے ان سنتوں نے، اس نادانوں نے. لیکن اب وہ سمے گیا، اب یہ سمے آ گیا کہ سب بہن بھائی بیٹے بزرگ شکشت ہیں. اور داس یہ کہتا کہ آپ کے گرو جی غلط مارگ درشن کر رہے ہیں، ان کو ستلوک کا بھی جان نہیں ہے، تو آپ ان کی پستک آپ کے سامنے دکھا دیتا ہوں. 90% آپ کا جو بھی اوفان تھا نا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ ہو گھی مکھن،